पहला सैमुअल अध्याय 14, अध्याय 14 पद 1 से लेकर पद 3 तक में। एक दिन शौल के पुत्र योनातान ने अपने पिता से बिना कुछ कहे अपने हथियार ढोने वाले जवान से कहा, आ हम उधर पिलिस्तियों की चौकी के पास चले। शौल गिबा के सिरे पर मिग्रोन में अनार के पेड़ के तले टिका हुआ था और उसके संग के लोग कोई 600 सैनिक थे और एली जो शिलो में यहोवा का याजक था, उसके पुत्र पिनहास का पोता और इकाबोद के भाई अहितूब का पुत्र अहिया भी एपोद पहने हुए संग था। परंतु उन लोगों को मालूम ना था कि योनातान चला गया है। वो उन लोगों का पिछला इतिहास बताता है, आपको इसे याद करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे आपको सिर्फ कहानी सुनाने दीजिए। एक सुबह शौल का बेटा योनातान जल्दी उठा। वो सोचने लगा, अभी तक कोई भी नहीं जागा है, वहां पिलिस्तियों की पूरी सेना है, हो सकता है आज परमेश्वर पिलिस्तियों की उस सेना पर इसराइल को विजय देना चाहते हैं। अब अगर परमेश्वर इसराइल को पिलिस्तियों पर विजय देना चाहते हैं तो उसको पूरी सेना की जरूरत नहीं है, वो एक सैनिक को भी विजय दे सकता है। 600 को या 2 को परमेश्वर के लिए सच में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे हमारे पास एक बड़ी सेना हो या कुछ सैनिक। वो वहां लेटे हुए इसी तरह की अद्भुत बातें सोच रहा था। आखिरकार परमेश्वर महान है और परमेश्वर की महानता और सामर्थ को पूरी सेना की जरूरत नहीं है, वो केवल 2 मनुष्यों को विजय दे सकता है। इसलिए उसने अपने हथियार ढोने वालों को उठाया। उसने कहा, मैं कुछ अद्भुत और अनोखी बात के बारे में सोच रहा था, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। मैं सोच रहा था कि अगर आज परमेश्वर इसराइल को फिलिस्तीन के ऊपर विजय देना चाहते हैं तो उनको पूरी सेना की जरूरत नहीं है, वो केवल कुछ लोगों को भी विजय दे सकते हैं। क्यों ना हम उधर जाएं और देखें कि अगर परमेश्वर आज इसराइल को विजय देना चाहते हैं। विश्वास में साहस की बात, मुझे वो अच्छा लगा। अतः वो और उसका हथियार ढोने वाला दोनों चुपचाप से तैयार हुए और धीरे से कैंप से बाहर चले गए। तब तक बाकी सारे लोग सोए पड़े थे। फिलिस्तीन जाने के रास्ता में योनातान ने कहा, अब हमें ये पक्का करना चाहिए कि परमेश्वर इसमें है कि नहीं। अतः जब हम फिलिस्तीनियों की फौजी चौकी के पास पहुंचेंगे, जब शतपति हमें देखेगा और अगर वो कहेंगे कि तुम लोग यहां ऊपर आओ, हम तुम्हें 1-2 चीजें दिखाएंगे, तब हम जान जाएंगे कि परमेश्वर इसराइल को विजय देना चाहते हैं। लेकिन अगर वो कहे, तुम लोग रुको, हम नीचे आकर तुम्हें 1 या 2 चीजें दिखाते हैं, तब हम जान जाएंगे कि परमेश्वर इसराइल की विजय नहीं देना चाहता और हम वहां से जल्दी निकल आएंगे। अतः जैसे ही वे फिलिस्तियों की फौजी चौकी के पास पहुंचे और शतपति ने इन दोनों लोगों को आते देखा तो उसने कहा, उन बेवकूफों को देखो, वे सीधे हमारी छावनी में आ रहे। हे तुम लोग यहां ऊपर आओ, हम तुम्हें 1-2 चीजें दिखाएंगे। योनातान ने कहा, ठीक है, आओ चले। लिखा है, उन्होंने अपने हाथ और पैरों के साथ चढ़ना शुरू किया। फिलिस्तियों की छावनी में जाने के लिए एक तरह से पहाड़ी पर झटपट पड़े। वे दुर्ग रक्षक सेना के बीच में कूद पड़े। योनातान ने वहां लोगों को गिराना शुरू कर दिया और उसका हथियार ढोने वाला उनके ऊपर से दौड़ने लगा। लगभग आधी एकड़ भूमि उन्होंने 20 फिलिस्तियों का सफाई कर दिया और बाकी लोगों ने उठना शुरू कर दिया। वे पराजित हो गए थे, वे एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे थे, उन्होंने भागना शुरू कर दिया। घाटी की दूसरी तरफ शौल उठा, उसने अपनी आंखें मली और इधर उधर देखा और उसने देखा कि सारे फिलिस्ती भाग रहे हैं, युद्ध चल रहा है और उनके बीच में दो लोग हैं जो उनका सफाया कर रहे हैं। उसने कहा, जल्दी गिनो कौन गायब है। उन्होंने गिना और बोले, ये योनाथान और उसका हथियार ढोने वाला है। अब इस जगह शौल ने एक बेवकूफी भरी बात की। शौल ने शपथ लेकर कहा, शापित हो वो जो सांझ से पहले कुछ खाए। अब ये मनुष्य जो शुरू में बहुत नम्र था, अब उसने असली घमंड प्रकट करना शुरू कर दिया है। शौल ने अपने दुश्मनों के बारे में कहा, परमेश्वर हर उस जन को श्रापित करे जो शौल द्वारा दुश्मनों से बदला लेने के पहले आज कुछ भी खाए। एक बेवकूफी भरा श्राप और प्रतिज्ञा। इसलिए शौल के साथ के लोगों ने फिलिस्तियों का पीछा करना शुरू कर दिया। सारे दिन फिलिस्ती दौड़ते और मोर्चा छोड़कर भागते रहे। जैसे वे जंगल में से भाग रहे थे, वहां एक मधुमक्खी का छाता था और उसमें से शहद भूमि पर टपक रहा था। योनातान जो वहां से दौड़कर जा रहा था, अपना भाला लिया और पूरा उस छते में डाल दिया और शहद खाने लगा। वो तरोताजा हो गया, जी उठा। दरअसल वो सारे दिन फिलिस्तियों का पीछा करता रहा था। वो अब शारीरिक रूप से गिरने वाला था, परंतु शहद तत्कालिक ऊर्जा का स्रोत है। ये शारीरिक प्रक्रियाओं में तुरंत घुल मिल जाता है। वो तरोताजा हुआ और फिर से फिलिस्तियों का पीछा करना शुरू कर दिया था। परमेश्वर ने उस दिन इसराइल को फिलिस्तियों के ऊपर एक बड़ी विजय दी। लेकिन मुझे योनातान का विश्वास पसंद है, मुझे उसका साहस पसंद है, उसका संकट में भी उसका विश्वास मुझे पसंद है। कौन जानता है परमेश्वर आज क्या करना चाहता है। अगर परमेश्वर कुछ करना चाहता है तो उन्हें पूरी सेना की जरूरत नहीं है। वो एक के साथ भी ये कर सकता है जो वो हजार के साथ करेगा। आओ देखते हैं परमेश्वर क्या करना चाहता है। आओ हम चले और साहस से काम लेकर पता करते हैं कि परमेश्वर आज क्या करना चाहता है। मैं ऐसे साहसी कदम को पसंद करता हूं, जब आप सिर्फ साहस करके निकलते हैं ये देखने के लिए कि परमेश्वर क्या करना चाहता है। जब सारी सेना एकत्रित थी और विजय के बारे में एक तरह से पता कर रही थी, शौल ने कहा, आज रात को हम उनका पीछा करेंगे, हम उन्हें भगाएंगे, हम उनके पीछे आज रात जाएंगे और पूरी तरह से उनका सफाया करेंगे। अतः उन्होंने वहां याजक को बुलाया और कहा, परमेश्वर से पता करो कि क्या हम उनके पीछे जाएं। परमेश्वर की तरफ से कोई उत्तर नहीं आया। इसलिए शौल ने कहा, ठीक है, आज किसने खाना खाया है। वो पता कर रहा था कि उसकी प्रतिज्ञा किसने तोड़ी, क्योंकि परमेश्वर याजकों के द्वारा उत्तर नहीं दे रहा था। अतः किसी भी आदमी ने कुछ भी नहीं कहा। उसने कहा, अगर ये मेरा बेटा योनातन भी क्यों ना हो, वो निश्चय ही मारा जाएगा। इसलिए उसने कहा, तुम सब लोग वहां खड़े हो जाओ तथा योनातान और मैं यहां खड़े होंगे और परमेश्वर हमें सही हिस्सा देगा। उन्होंने चिट्ठी डाली और वो योनातान और शौल के नाम निकली। अतः उन्होंने फिर से चिट्ठी डाली और वो योनातान के नाम निकली। शौल ने कहा, तुमने क्या किया था। योनातान ने कहा, पिताजी, मैं सच में जानता नहीं था कि आपने ये श्राप दिया है। मैं जंगल से होकर भाग रहा था और मैंने मधुमक्खी के छत्ते से शहद टपकता देखा। मैं भूख से मर रहा था और मिटने ही वाला था। इसलिए मैंने थोड़ा सा शहद लेकर खा लिया। उसने कहा, मेरी आत्मा तृप्त हो गई। योनातन ने कहा, पिताजी क्या यह बहुत कठोर नहीं है कि आपने इन लोगों को खाना नहीं खाने दिया? क्या आप इन्हें आज लूट का माल खाने देंगे? उनके पास काफी शक्ति होनी चाहिए कि हमें पिलिस्तियों का पीछा करके पूरी तरह से उनका सफाया कर सके। पिताजी, जो बात आपने कही क्या वो कठोर नहीं है? शौल ने कहा, उसे मृत्यु दो। इस पर लोग बीच में आए और उन्होंने कहा, नहीं, क्योंकि आज का दिन परमेश्वर का बनाया हुआ है। परमेश्वर हमारी ओर से लड़ा है। कोई आदमी इसे नहीं छुएगा, कोई आदमी इसके ऊपर हाथ नहीं उठाएगा। मुझे ये बयान पसंद है क्योंकि आज का दिन परमेश्वर का बनाया हुआ है। इस तरह लोगों ने योनातान को बचा लिया और वो अपने पिता के हाथों मारा नहीं गया। यहां हम देखते हैं कि इस मनुष्य पर पागलपन सवार होना शुरू हो गया। इतनी अद्भुत शांति और संभावनाओं के साथ शुरू हुआ, लेकिन उसमें घमंड आ गया। हम उसमें घमंड को अब बढ़ता हुआ देखते हैं। ये मनुष्य जिसमें अद्भुत क्षमता थी, धीरे धीरे हमारी आंखों के सामने घमंड से भरता जा रहा है और परमेश्वर से दूर होता जा रहा है।